पूज्य पाद स्वामी जी महाराज आज श्रद्धा का प्रसंग समाप्त करते हैं। भक्ति प्रेम से सींचिए करके दया दयाल, अपनी श्रद्धा दान कर सबको करो निहाल। स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रकाश से ये प्रार्थना दोहा। भक्ति प्रेम से सींचिए करके दया दयाल, अपनी श्रद्धा दान कर सबको करो निहाल। एक जीवंत दृष्टांत के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज श्रद्धा के महात्म्य को कितने सुंदर ढंग से दर्शाया है। श्रद्धा का एक पक्ष ये भी है, ये स्वीकार करना, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है अपने ऊपर, औरों के ऊपर, इर्द गिर्द संसार में जहाँ कहीं भी कुछ घटित होता है वह सब राम इच्छा से होता है, ये श्रद्धा का पक्ष है, ये श्रद्धा का चिन्ह है। ये मात्र सिद्धांत नहीं है, ये श्रद्धा का पर इस पर विश्वास इस प्रकार कब होगा जब आपकी साधना चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। ये विश्वास, ऐसा विश्वास होना इतना आसान नहीं है। जो कुछ भी मुझ पर घटित हो रहा है, सारे संसार में घटित हो रहा है, सब परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है और उसकी इच्छा में अहित नहीं है। जो कुछ भी होता है, कहीं भूकंप आया है तो उसमें भी हित है, कहीं कुछ भी हुआ है उसमें भी हित है। ये एक भक्त की भावना है और ये सत्य है। परमात्मा की हर सजा में भी करुणा है। साधक जनों, ये कभी भी परख के देख लीजिएगा। अब तो वह दंड देता नहीं, लेकिन ऐसा दंड देता हुआ वह दिखाई देता है। चाहे वह यमराज दंड देता है, चाहे जो व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए हैं वह दंड देते हैं, लेकिन अंततः तो यही दिखाई देता है कि परमात्मा दंड दे रहा है। उसका स्वभाव दंड देना नहीं है, वह दंड नाम का शब्द जानता ही नहीं है। आपके अपने कर्मों के अनुसार जिनकी नियुक्ति इस प्रकार की हुई हुई है दंडित करने की, वह दंड देते हैं। परमात्मा तो केवल एक ही बात करना जानता है और वो है क्षमा। कोई जाके बाई का लाल परमात्मा के द्वार पर क्षमा मांगे, गिड़गिड़ा के क्षमा मांगे, ये कभी हो नहीं सकता कि उसके दरबार से उसे खाली हाथ लौटना पड़े। कितनी महान है ये श्रद्धा। संत महात्मा फरमाते हैं, साधक की अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद के रूप में आपके पास लौटती है। वाह, आपकी अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद, चाहे वे मेरे गुरुजन दे रहे हैं, चाहे वे परमात्मा दे रहा है, आपकी श्रद्धा ही आशीर्वाद बन के तो लौटती है। आप जितने श्रद्धालु उतने अधिक आशीर्वाद, उतनी प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, जैसे सागर का पानी खारा वाष्प बनता है, आकाश में जाता है, आकाश उसे खारा नहीं रहने देता, उसे मीठा बना के तो वर्षा के माध्यम से बरसा देता है। साधक की अपनी श्रद्धा ही आशीर्वाद बन के तो लौटती है। आइए साधक सुनो, दो एक स्वामी जी महाराज जैसे दृष्टांत तो नहीं है सुंदर जैसे उन्होंने दिया है, पर दो एक दृष्टांतों के माध्यम से आज इस श्रद्धा की चर्चा को समाप्त करेंगे। एक गरीब आदमी है, परमात्मा का भक्त है, जीवनदास नाम है उसका। परमात्मा के दरबार में जाना है, बेचारा बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग तो परमात्मा के दरबार में जाते हैं, मूर्ति के आगे बहुत कुछ चढ़ाते हैं, अपने समर्थ से भी अधिक, कभी परमात्मा को रिझाने के लिए, कभी दूसरों को दिखाने के लिए। ये परमात्मा जाने कैसी कैसी भावनाएं हुआ करती हैं। एक सेठ था, वह अपनी जेब में बहुत से कॉइन्स रखता था और एक एक करके जोर से फेंकता था ताकि मेरे कॉइन्स की आवाज परमात्मा तो सुने ही सुने, लेकिन बाकी जो आसपास वाले हैं वो भी सुने कि सेठ कितना ज्ञानी है, कितना दयालु है, कितना कुछ चढ़ा रहा है परमात्मा के दरबार में। ये बेचारा गरीब आदमी है। आज एक दुकान पर गया, कमल का फूल देखा, पसंद आया। आज भगवान के श्री चरणों में यही अर्पित करूंगा। डरते डरते पूछा, लाला कितने का है? कहा आपसे 10 रुपये लूंगा। अपनी जेब टटोली, देखा है 10 है, शायद 10 ही थे। 10 रुपये देने को किए तो उतनी देर में एक और व्यक्ति आ गया। पूछा ये फूल कितने का है? कहा बिक गया, इन्होंने ले लिया है 10 रुपये में, मैं 25 दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं 25 दूंगा, मुझे अपनी प्रेयसी को, शब्द तो देवियों वैश्या है पर मैं प्रेयसी कह रहा हूँ, मैं अपनी प्रेयसी को भेंट करना चाहता हूँ, 25 रुपये देने को तैयार हूँ। भक्त को बहुत बुरा लगा, देखो मेरी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, इसे पता है कि मैं इससे अधिक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी हो मैं भगवान के लिए संकल्प कर चुका हूँ कि ये फूल मैंने उनके श्री चरणों में समर्पित करना है, अतः बोल दिया 50 रुपये दूंगा। 100, दूसरी तरफ से 100, बात पहुँचते पहुँचते देवी 1,00,000 रुपये पर पहुँच गए। वह कमल का फूल 1,00,000 रुपया कीमत। व्यक्ति ने सोचा प्रेसी को छोटी मोटी कोई चीज लेके और दे दूंगा, 1,00,000 का फूल देके क्या करना है, अतएव वह तो भाग गया। वह फूल जमुनादास ने खरीद लिया, अपनी सारी की सारी संपत्ति बेचकर जो कुछ भी बेचारे के पास था, लाला को कहा मैं तेरा 1-1 पैसा चुकाऊंगा, अभी घर जाऊंगा, घर जाके अभी तो मुझे फूल दो, मैं जाके परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाऊंगा, पर मैं अपना घर इत्यादि जो कुछ भी मेरे पास है, खेत इत्यादि सब कुछ बेच के तो तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा। मेरी बात पर विश्वास कर, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर करके तो तुम्हें कहता हूं कि मैं तेरा पैसा सारे का सारा लौटाऊंगा। कहते हैं देवियों, जमुनादास के भगवान के श्री चरणों में फूल रखने की देरी थी, भगवान का मुकुट धरती पर गिर गया। भगवान कह रहे हूं तेरा फूल मेरे भक्त इस मुकुट से बहुत भारी है, तेरी श्रद्धा इतनी अगाध, इतनी अपार, इतनी असीम है, मैं नतमस्तक हूं। ये सत्य है देवियों सज्जनों, श्रद्धालु भक्त का स्थान बहुत उच्च है, और श्रद्धा के सामने परमात्मा श्रद्धा नतमस्तक हो जाता है। परमात्मा, बंदे की बात नहीं की जा सकती, परमात्मा श्रद्धा नतमस्तक हो जाता है जिसके अंदर श्रद्धा है। अभी स्वामी जी महाराज ने जो कथा आपके सामने रखी है, एक राजा एवं मंत्री की, नास्तिक मंत्री है और अति श्रद्धालु राजा है। हम साधक सुनो, यह कथा सुनने के बाद एक छोटी सी घटना और याद आती है। एक गरीब दंपत्ति हैं, जंगल के पास जुड़ता हुआ एक गांव है, राम भक्त हैं, पति पत्नी दोनों राम राम जपने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं पता नहीं, राम भजन में दोनों लीन रहते हैं। गांव में औरों के पक्के मकान भी होंगे, अच्छे मकान भी होंगे, इनकी मकान तो है लेकिन झोंपड़ी जैसा कहते हैं, सो कच्चा होगा, घास फूस का बना हुआ होगा इत्यादि इत्यादि। उस झोंपड़ी में या उस कमरे में दोनों पति पत्नी सहर्ष रहते हैं। जैसे गांव में रिवाज होता है, लगभग हर एक के पास कोई ना कोई पशु होता है, कुत्ता भी होता है, इसके पास भी एक घोड़ी है, शौक के तौर पर नहीं रखी हुई, लोग गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, दूध इत्यादि के लिए, बेचने के लिए, अपने लिए भी, इसलिए घोड़ी रखी हुई है। घोड़ी पर ही इसका निर्वाह होता है। लोगों का बोझ धोखे तो अपनी आजीविका चलाता है। दोनों पति पत्नी जितना भी होता है, दोनों पत्नी पत्नी सहर्ष संतुष्ट है। जिसके पास संतोष है उसे कौन अशांत करे। ये दोनों पति पत्नी बहुत संतुष्ट हैं। जितना परमात्मा देता है बिल्कुल, किंतु परंतु कोई ना नुक्कर नहीं करते, सहर्ष स्वीकार करते हैं। रात को चैन की नींद सोते हैं, जैसा भी परमात्मा ने दिया वैसा खा के, नमक वाला दिया, स्वादु दिया, बिना नमक के दिया, कैसा दिया, थोड़ा दिया, बहुत दिया, खा के बड़े चैन से दोनों सोते हैं। आज साधक जनों, जंगल से रात को एक शेर आया है, घोड़ी को खा गया। नियम होगा उसका, आता जाता रहता है गांव में, आप ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। शेर आया, गाय को उठा के ले गया, किसी बच्चे को उठा के ले गया, रीछ आ गया, वह किसी को उठा के ले गया, इत्यादि इत्यादि ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज घोड़ी खा गया है शेर, पत्नी बिलख रही, रोटी रोजी का साधन था खत्म हो गया, भूखे मरेंगे क्या चिंता करती है। बंदा कहता है, पति कहता है, अरे क्यों चिंता करती है, मेरे राम पर भरोसा रख। खिड़की बंद करता है तो द्वार खोलता है, काहे की चिंता करती है, उसने घोड़ी मारी है तो कोई ना कोई साधन हमारे लिए पहले ही तैयार करके रखा होगा। विश्वास रख, श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। एक तोता भी रखा हुआ था सुबह जगाने के लिए, रोज जगाता था। भौर भई रात गई, सुबह सुबह ही टराने लग जाता था। भौर भई रैन गई, रात बीत गई, सवेरा हो गया है। ये तोते की आवाज सुन के पहले लोग तोतों को इस प्रकार से, पंछियों को कुछ ना कुछ पढ़ाया करते थे, लटपट पंछी चतुर सुजान सबका दाता श्री भगवान, बोल मियां मिठू इत्यादि इत्यादि, कुछ ना कुछ राम राम सीता राम कुछ ऐसी बातें सिखाते रहते थे। ये बोलता था, रैन गई भौर भई। आज पिंजरे का द्वार खुला रह गया, तोता उड़ गया। पत्नी फिर बेचारी बेचैन, लो पहले घोड़ी गई अब तोता भी गया, कौन जगाएगा सुबह, हमारे पास कोई टाइम पीस नहीं, अलार्म बजाने वाला जगाने वाला कोई नहीं, मुर्गे की आवाज से जागना होगा। गांव में लोग मुर्गे की आवाज सुनते हैं तो उठते हैं, पहली बांग दी है, दूसरी बांग दी है, उसके मुताबिक उन्होंने अपना टाइम जो है वह निश्चित किया होता है। पहली बांग इतने बजे मुर्गा देता है, दूसरी बांग इतने बजे देता है, उसके अनुसार उठते हैं। गांव की बातें हैं साधक जनों, बहुत मजेदार, बहुत सरल, बहुत सीधी सादी बातें हैं उनकी। कौन जगाएगा, अरे तू क्यों चिंता कर दी है, फिजूल में चिंता कर दी है, मेरे राम पर भरोसा रख, विश्वास रख। मानो एक दिन व्यतीत हुआ अपनी पत्नी को समझाने समझाने में, रात को कुत्ते ने कुछ खा लिया, वो मर गया। तीन मृत्यु एक घर में, मानव की तो नहीं लेकिन वे अपने परिवार के सदस्य ही हैं समझो, ऐसा उनको महसूस हुआ। हमारे घर में तीन मृत्यु हो गई, मातम सा छा गया। पति फिर समझाता है पत्नी को, बिल्कुल चिंता ना कर, डोल तो वह भी किया है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, परमात्मा तेरी करनी में मेरा ऐसा अटूट विश्वास है, कोई त्रुटि नहीं है, ना ही अन्याय है, ना ही अत्याचार है। देर सवेर हो सकती है लेकिन कोई गलती नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है तेरी करनी में। अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, अरे जो परमात्मा ने आज कर दिया है ना, आज तक जो कुछ भी कर दिया है, इसमें कोई ना कोई तो देख लेना कोई हित छिपा हुआ होगा। वही वह परमात्मा को भी कह रहा है, परमात्मा मुझे पूरा यकीन है कि तेरी इस करनी के पीछे कोई ना कोई मेरा परम हित छिपा हुआ होगा। तू मेरे हित के अतिरिक्त मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं सकता। ऐसा विश्वास उस राम भक्त का। रात्रि का आगमन, डाकुओं ने सारे गांवों को लूट लिया है। ढेर सारे डाकू आते हैं, पूरे का पूरा गांव लूट लिया, कुछ को मार भी दिया होगा, जो जागे होंगे जिन्होंने विरोध किया होगा उनको मार दिया, जिन्होंने लूट नहीं लिया उनके घर के घर सब लूट गए। डाकुओं का सरदार इनके कुटिया के सामने भी आया है, लगता है इस घर में कोई है नहीं, ना कोई पशु बार बंधा हुआ है, ना कुत्ता ही भौंक रहा है, लगता है ये घर खाली है, इसमें कोई है नहीं, चलो आगे चलो। सुबह हुई, भक्त को पता लगा कि रात को ऐसी दुर्घटना घटित हो गई है, डाकू आए थे, सारे का सारा गांव लूट के चले गए, इतनी सारी हत्याएं करके चले गए। तब कहा, देख परमात्मा की करनी कितनी मीठी है, यदि हमारे घर के आगे घोड़ी जिंदा खड़ी होती, कुत्ता भौंकता होता, तो हमारा घर भी लूट गया होता और हो सकता है हमारी भी हत्या हो गई होती। राम की करनी में देवी कोई दोष नहीं है। ऐसा विश्वास, जो कुछ होता है परमात्मा की इच्छा से होता है और उसकी इच्छा में किसी का अहित नहीं है, इसी को श्रद्धा कहा जाता है। तो साक्षी जनों, इसी के साथ ही श्रद्धा के प्रसंग को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।